कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
अग्नि का अर्थ होता है प्रकाश युक्त, प्रकाश में परमेश्वर। अग्नि तनुरसी हे प्रकाश में परमेश्वर आपका शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी उस परमेश्वर का सबके धारण पोषण करने के लिए भी उसका एक शरीर है। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में दो बार ये क्लियर कर रखा है, स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा साकार है। और लेकिन वेदों का ढिंडोरा पीटने वाले के वेदों में भगवान निराकार लिखा है, परमात्मा निराकार है, हमने वेदों को पढ़ा है, उन्होंने कोरी झूठ बोल रखी थी। उन्होंने ना तो वेदों का ज्ञान था ना उनका कोई सब अनुभव था। अब आपको कुछ सदग्रंथों के प्रमाण दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक धर्म शिरोधार्य मानता है। और उसके अंदर लिखा क्या है वो स्वयं परिचित नहीं। जैसे पवित्र बाइबल को पवित्र ईसाई धर्म शिरोधार्य मानता है और उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरी बुक वो नहीं मानते। ऐसे ही पवित्र कुरान शरीफ को पवित्र मुसलमान धर्म शिरोधार्य मानते हैं और उसके इक्विवेलेंट उसके बराबर कोई और ज्ञान वो नहीं मानते। ऐसे पवित्र हिंदू धर्म चारों वेदों को पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को, पवित्र 18 पुराणों को आदि को वो सत्य मानते हैं, शिरोधार्य मानते हैं, लेकिन उनमें लिखा क्या है टोटली अपरिचित है। पुण्यात्मा, अब हमने उस परमेश्वर की महिमा से परिचित होना है और जब हम पूर्ण रूप से परिचित हो जाएंगे तभी हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। गीताजी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जब नाना भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से भ्रमित हुई तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर, एक पूर्ण परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर आधारित हो जाएगी, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भक्त बनेगा, अन्यथा तने कोई भ्रमित कर देगा और तू तभी वैसे ही डगमग हो जाएगा। सत्य मार्ग को त्याग करके तू फिर कुमार्ग पर चल पड़ेगा, इसलिए तेरे को तत्व ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब सर्वप्रथम देखिएगा पवित्र बाइबल। अब ईसाई धर्म के व्यक्ति श्रद्धालु कहते हैं परमात्मा निराकार है। अब उनसे कोई पूछे कि परमात्मा की क्या स्थिति है, तो वो बोलते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। फॉर्मलेस माने परमात्मा का कोई आकार नहीं है। और जबकि पवित्र बाइबल ठोक के गवाही दे रहा है कि परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य सदृश साकार है। बताओ हे भगवान, हमारे सदग्रंथ कुछ कह रहे हैं जिनको हम सरोधार्य मानते हैं, और हमारी थ्योरी क्या है, ये सब काल बलि ने भ्रमित करवा रखा है, सच्चाई से दूर रखा। परमात्मा ने आकर के ही हमें ये तत्व ज्ञान बताया है। अब देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण अध्ययन बाइबल, ये कहां से प्रकाशित है? पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक हैं डेविड शटुवार्ड, अंग्रेजी, प्रधान संपादक गोल्डन सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति स्टानली एम पोर्टन PhD अध्यक्ष, विलियम डब्ल्यू मेंसिस PhD उपाध्यक्ष, आदि आदि सारे पूरे इनका लिख रखे हैं विवरण, और ये USA से छपा है। फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग फाइट, मिशनरी USA। अब ये अंग्रेजी ये यहां से छपा है और हिंदी में अनुवाद हुआ है। इसका देखिएगा, ये है सृष्टि उत्पत्ति, उत्पत्ति ये यहां से आरंभ होता है। ये आरंभ होता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अच्छा, इस प्रकार ने ये पहला दिन था, यानी जो इस प्रकार पहला दिन हो गया, दूसरा फिर किया, भोर हुआ इस प्रकार, और परमेश्वर ने ये यहां से अलग अलग लिखा है, ये पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर करें जो जल दो भाग हो गए। तब परमेश्वर ने एक अनंत अंतर बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर से जल को अलग किया, और वैसे ही हो गया। ये फिर तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन। अब हम आते हैं छठवें दिन पे। अब प्रश्न नंबर ये 5 है, प्रश्न नंबर 5 उत्पत्ति ग्रंथ है, ये 1 और 2 अध्याय, और इसकी जो श्लोक नंबर है ये 23। यहां से ये इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। फिर हम छठवें दिन पर आते हैं, 26 से शुरू होता है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बना, अपनी समानता में बनाए। कैसा हुआ भगवान? परमात्मा ने कहा कि मनुष्य को हम अपने समान बनाए, अपनी समानता में बनाए। आगे देखो 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। दो तीन बार लिखा है, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। ये इसे सिद्ध हो गया परमात्मा साकार है और मनुष्य जैसा है। क्लियर हो गया, इसमें तो कंसेप्ट ही डाउटफुल नहीं रहा, क्लियर हो गया। और किसी से पूछ ले, साई भाई से नहीं होगा, गॉड इज फॉरम रेस्ट, डिल्ले से ओठ लटका के नहीं, भगवान निराकार है। अरे तेरा गजब हुआ, हमारे तुम्हारे साथ सदग्रंथ कह रहे हो साकार है, मनुष्य जैसा है। तो कहते हैं, झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद विदा चतुराई, तुम्हारी थ्योरी गलत है, तुम्हारे अपने सदग्रंथों के विरुद्ध तुम्हारा ज्ञान है, तुमने भगवान पाया कहां से? अब एक और कमाल कर रखा है सदग्रंथ में, कि इसमें स्पष्ट किया है कि मनुष्यों के लिए या किसी भी प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए मांस खाने का आदेश प्रभु का नहीं है। प्रभु का क्या आदेश है? अब कई भाई जो अनाड़ी आंट लगा देते हैं कि पौधे में भी तो जीव है, उसको भी तो हम खाते हैं, जैसे साग सब्जी खाते हैं, फलाना खाते। अरे ये परमात्मा का आदेश है, हम उसके आदेश से उसको खा सकते हैं, वो दोष नहीं। जैसे आप लोग कोई जैसे शिकार खेलते हैं, कोई तीतर मार दे, कोई मुर्गा ही मार देता है, कोई अन्य जीव जंतुओं को मार देता है, तो उसको राजा सजा नहीं देता। जो राजा ने जो मना कर रखा है, जैसे अपने यहां भाई काला हिरण नहीं मारना, और उसको कोई मार देता है भाई मनुष्य नहीं मारना, कोई मार देता है तो उनको सजा दी जाती है। तो ऐसे ही वो प्रभु का विधान है, और उसने बताया कि तुम ये चीज खा सकते हो, तो हम उसको खाएंगे तो हम दोषी नहीं है, और उसकी मर्यादा तोड़ देंगे तो हम दोषी हैं। अब देखना कि मनुष्य को स्याना भी इतना समझदार बना दिया कि उसने पृथ्वी पर सब प्रकार के पक्षी पशु पक्षियों से वो कंट्रोलर हो गया। फिर परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, उसने उनसे कहा, सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और पृथ्वी के ऊपर और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। सारी बात निमट गई। मनुष्यों को ये कह दिया कि जितने भी ये सुनो जितने भी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं, जितने भी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। इसमें मांस खाने का आदेश ही नहीं है। परमात्मा ने मांस खाने का आदेश किसी को नहीं दिया। और आप इधर ओहो मुसलमान धर्म ईसाई धर्म में मांस खाना तैसा है जैसा जलेबी खाना हो, इनको कोई इस बात की चिंता ही नहीं, डर नहीं भगवान का है तेरा गजर भैया। जब भगवान मना करते हैं और हम उसका विधान तोड़ते हैं और उसी के गुणगान करते हैं तो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। आगे देखो, आगे फिर उन अन्य पशु पक्षियों को भी आदेश दिया प्रभु ने, और जितने भी ये 30 नंबर और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। ओहो पुण्यात्माओं, स्पष्ट कर दिया कि जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनके लिए भी बता दिया है कि तुम्हारा ये आहार है, तुम्हें कुछ भी और एक दूसरे प्राणी को नहीं खाना है। आगे देखिएगा, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब को देखा तो क्या देखा कि वो बहुत अच्छा है। तथा फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये छठवां दिन हो गया, छठा दिन हो गया। अब सातवां दिन क्या हो गया, तो फिर परमेश्वर ने यो आकाश पृथ्वी और उसकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया, और फिर परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था सातवें दिन विश्राम दिया, समाप्त किया, और उसने अपने उस किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी कि पवित्र ठहरा आदि आदि। अब देखो ये क्लियर हो गया कि पूर्ण परमेश्वर ने सात दिन में सृष्टि रची, छह दिन में और सातवें दिन विश्राम किया। वो परमात्मा पूर्ण है। उसके बाद जो भी इस पवित्र बाइबल में जो भी विवरण आता है वो पूर्ण परमात्मा का नहीं है। वो फिर पूर्ण परमात्मा ने सारी सृष्टि रच करके इस काल को दे दी, काल भगवान ब्रह्म को। उसके बाद ये काल और इसके दूतों का इसके ये सब विवरण, उसके बाद ये काल के उन दूतों की कला है। अभी आपने पवित्र बाइबल में देखा कि परमात्मा मनुष्य जैसा है और सह शरीर है। अब उसने छह दिन में सृष्टि रची, सातवें दिन विश्राम किया। पवित्र मुसलमान धर्म पवित्र बाइबल को भी समान दृष्टि से देखते हैं, और वो इस बात को मानते हैं कि पवित्र बाइबल में जो लिखा है वही पूर्ण परमात्मा है जिसने छह दिन में सृष्टि रची, सातवें दिन तख्त पर जा बैठा, विराजमान हुआ। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसमें यह भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो कबीर नाम है उस परमेश्वर का जिसने छह दिन में सृष्टि रची, सातवें दिन तख्त पर जा बैठा। वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, अकबरु कहो, कबीरु कहो, कबीरन कहो, खबीरन कहो, खबीरा कहो, कबीरा कहो, उसी के नाम हैं। जो उच्चारण में थोड़ा थोड़ा अंतर होने से नाम उस कबीर अल्लाह की तरफ ही है, अकबर अल्लाहु अकबर। अब मुसलमान भाई उस अल्लाह कबीर का अर्थ करते हैं बड़ा भगवान, अल्लाह माने प्रभु, और कबीर का अर्थ वो बड़ा कर देते हैं। अब कोई भी चीज है, कोई भी नाम है, उसका अर्थ अवश्य होता है। तो ऐसे अर्थ अपने स्थान पर है, लेकिन उस वो नाम ही उस परमात्मा का कबीर है। अब देखिएगा कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा कुरान शरीफ के विषय में कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, कि इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल श्रेष्ठ और सत्य है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। और यदि कोई कहे कि ये गलत है, हम नहीं मानेंगे, इनका कहने का भाव ये है। अब देखिए यह कहां से छपी है, यह वह इलामी किताब है जिसमें संदेह की गुंजाइश नहीं, कुरान शरीफ। यह है मुतर्जम 82 यानी सा अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, दिल्ली। यहां से ये छपी है। इसके अंदर ये देखिएगा सूरत फुरकानी, यह है सूरतुल फुरकानी 25, कुरान शरीफ 604 पृष्ठ पे। ये उसकी अरबी भाषा है, ये अरबी भाषा और उर्दू में लिखी हुई है, और ये सारा अरबी भाषा है, इसको हिंदी में लिखा है, इसी का अनुवाद। इसमें 52 नंबर आयत में के लिखा है फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। अब इसमें ये कबीरन शब्द लिखा, कबीरन, अब इसको कबीरा भी बोलते हैं, इसको कबीरा भी बोलते हैं, कबीरन बोलो, कबीरा बोलो, इसको आप प्रमाण करते हैं आपके समक्ष। ये है कुरान। अब कुरान शरीफ आपने देखा, अब कुरान मजीद देखो, केवल नाम में अंतर है, लेख सेम टू सेम है, लेख वही है, लेकिन नाम इसमें कुरान मजीद लिखा इसका। इसमें क्या कहा है ये देखिए, कुरान मजीद, कुरान मजीद मुतर्जम मैं अरबी मतन ऑफिस बुक डिपो 422 प्रकाशक ऑफिस बुक डिपो मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6। इसके 577 पृष्ठ पर यही सूरत फुरकानी लिखी है, 576 पृष्ठ पर, ये देखना, ये यहां सूरत फुरकानी 25 पृष्ठ 576, ये वही 51 ये 52 नंबर 51 समाप्ति 52 नंबर आयत है ये। फला तुतियल काफिरन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरा, इसको कबीरा कहो, कबीर कहो, कबीरन कहो, एक ही अर्थ है, इसका अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया है। अब ये देखिएगा कुरान, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, इसमें पृष्ठ 604 है, उसमें 576, लेख वही है, पृष्ठ जो के तू है। सूरत फला तुतियल काफिरन व जिहादम बिही जिहादन कबीरन, इनका अनुवाद इन्होंने किया है, इस 52वीं आयत का हिंदी अनुवाद किया, क्या कहा कि ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब इसका क्या अर्थ बनता है ये दास बताएगा, कि कुरान शरीफ के बोलने वाला, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला जो अल्लाह है, उसको मुसलमान धर्म अपना भगवान मानते हैं, और वो कह रहा है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कि ए पैगंबर, ए हजरत मोहम्मद, मैंने तुझे जो कुरान शरीफ में ज्ञान दिया है तो उसके ऊपर दृढ़ रहना, उसके और इन काफिरों की बात मत मानना, वो कबीर को भगवान नहीं मानते, तो उनकी बातों में मत आना। मेरे द्वारा जो कुरान शरीफ का जो ज्ञान, ये दलील, ये एग्जाम्पल तुझे दिए हैं, इनको तो सही मानना और मेरे ज्ञान के आधार पर रुके रहना, उन बातों, उनकी बातों को नहीं मानना। और वो कबीर परमात्मा है, उस कबीर भगवान के लिए तू संघर्ष कर, उनकी बातों को मान, लड़ना नहीं, जिहाद माने संघर्ष कर। वो कहते रहे कि वो कबीर भगवान नहीं है, तू मत मानना उनकी बातों को, मैं जो कह रहा हूं वो गीता, जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला हजरत मोहम्मद का अल्लाह कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है, गीता जो तेरे को कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा हूं, और ये वही परमात्मा है कबीर जिसने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखिएगा, अब ये 607 देखो, 607 पर हिंदी पढ़ेंगे, 52 की हिंदी आपने पढ़ी, फिर पढ़िए। तो ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब ये कहते हैं वो कबीर परमात्मा है, वो कबीर भगवान है, उसकी मेरी इस बात पर विश्वास रखना जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, और इन काफिर जो कबीर को भगवान नहीं मानते वह काफिर हैं, वो निकम्मी आत्मा है, उनकी बातों में मत आना, उनके साथ तो संघर्ष करना, अर्थात वो कहते रहेंगे तो मानना नहीं। और ये वही परमात्मा है, कौन, अब देखना क्लियर किया है, ये सूरत फुरकानी 25 आयत, ये 52 आपने पढ़ ली, अब 53 है, ये यहां से शुरू होती है। और वही है वो जिसने दो दरियाओं को मिला चला, एक पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, दोनों को एक आड़ में मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी की दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। अय हाय पुणात्माओं, देखो कुरान शरीफ का जो ज्ञान दिया जा रहा है ये इन मुसलमानों के भगवान के द्वारा दिया जा रहा है, और वो भगवान, वो अल्लाह कह रहा है कि मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं इस पर दृढ़ रहना। और वो परमात्मा कबीर वही है जिसने सबका, सारी सृष्टि की रचना की, और वो सर्वशक्तिमान है, उसके सामने कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, देखना। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। और अब 55 में, और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। 55 आए तो इसमें क्या कहा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो काफिर लोग, तो वो ना तो न लाभ दे सकते ना कुछ हानि कर सकते, और अपने पूर्ण परमात्मा से तो वो मुंह मोड़े हुए हैं। ओह, और वही परमेश्वर की अमरवाणी कह रही है, ऊंची थलियां खेती वो है ये भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थली जैसे बहुत ऊंचा, ऊंचे ऊंचे टिब्बे होते हैं ये, उनके ऊपर खेती करते थे पहले, सिंचाई साधन अन्य नहीं था, उस समय की वाणी है, ना कोई नहर से सिंचाई होती थी, ना कोई ट्यूबवेल था, कुआ खोद करके कहीं रेट होता था, नहीं तो वो ऊपर जैसे वर्षा होगी तो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बीज बीज दिया तो फिर दोबारा वर्षा नहीं होती तो वो सूख जाता था, वहां कोई उपज नहीं होती थी। और एक डहर होती है, समतल स्थान होता है, जमीन होती है, वहां पर ऊंचे टीबों पर बरसा हुआ जल उस नीचे वाली जमीन पर आकर के सिंचाई का काम करता था, उस डहर बोलते हैं उसको, डहर खेत। उस डहर खेत में बीज बीजने से वर्षा होती थी, उसमें ज्यादा जल स्टोर हो जाता था और वो कई गुना फसल होती थी। वहां मान लीजिए टीबों के ऊपर कई कई बार लगातार वर्षा होगी तो दो मन एक एकड़ में पांच मन गेहूं होते मुश्किल से हो पाते या बाजरा होता ज्वार होती तो डहर के अंदर 50 मन हो जाते। कहने का भाव यह है कि जो हम अन्य पूजा करते हैं अन्य देवी देवताओं की वो तो समझ ले 2 मन कणक और हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं तो समझ लो 100 मन कणक। तो यहां ये कहने का भाव है कि ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू अपने उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके ये अनुपासना करते हैं दूसरे देवताओं की उनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। और वही ये प्रमाण दे रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी इनकी जो पूजा करते हैं ये न तो किसी को हानि दे सकते न ये लाभ दे सकते क्योंकि उनके प्रारब्ध में वो परिवर्तन नहीं कर सकते। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है वो हमारे बुरे संस्कारों को पाप कर्मों को काट करके समाप्त कर देता है और शुभ संस्कार हमारे को प्राप्त करा देता है हमारे सब रोगों को दूर करता है मृत्यु तक को भी हमारे को एक्सटेंड जीवन को भी एक्सटेंड कर देता है मृत्यु को भी टाल देता है। यही कुरान शरीफ कह रही है कि काफिर लोग तो ऐसों को पूजते हैं जो ना लाभ दे सकते ना हानि कर सकते और काफिर तो अपने परवरदिगार से मुंह मोड़े हुए हैं। अब 56 में आयत नंबर 56 में ए पैगंबर और ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। 57 में और ए पैगंबर ये 58 में कमाल कर दिया 59 में। अब क्या बताया है 58 में ये कहा कि ए पैगंबर वो कबीर नामक अल्लाह सब पापों का नाश कर देता है और वही पूजा के योग्य है इबादा ही कबीरा। अब देखो ए पैगंबर उस जिंदा यानी कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को एक जिंदा महात्मा के रूप में साकार रूप में जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में काला सा एक ओवरकोट पहनते हैं काला पूरा पूरे घुटनों से नीचे तक का एक ही एक कच्छा पहनते हैं छोटा सा और ऊपर काला ही टोप रखते हैं गोल गोल सा उस ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा बोलते हैं जिंदा महात्मा। तो कबीर परमेश्वर हजरत मोहम्मद जी को उस जिंदा महात्मा के रूप में जाकर मिले थे और उनको सतलोक लेकर गए थे। परमात्मा कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए और इच्छा रूपी वहां नहीं रहो उल्ट मोहम्मद मैल पठाया गुज बीर से कलमा लाया कहते रोजा बंग नमाज कहीरे बिस्मिल की नहीं बात कहीरे। तो यहां वही प्रमाण दे रहा है हजरत मोहम्मद का खुदा किसी और पूर्ण परमात्मा उस बड़े भगवान की तरफ संकेत कर रहा है कबीर अल्लाह की तरफ संकेत कर रहा है। देखो ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है अविनाशी है वास्तव में और फिर तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो उसकी महिमा का गुणगान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। यहां इन्होंने काफी शब्द कर दिया कबीर का वो कबीर परमात्मा अपने बंदों के अपने भक्तों के गुनाहों से खबरदार है वो उनका खूब जानता है उनके दुखों को निवारण कर देता है। अब देखो जिसने अब ये 59 में कमाल कर दिया जिसने ये कबीर भगवान वही है अल्लाह कबीर वही है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच है बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया फिर तकत पर जा विराजा हुआ अल्लाह बड़ा वो अल्लाह कबीर हम इसको अल्लाह कबीर कह दे इन्हों बड़ा शब्द कर दिया कबीर वह अल्लाह कबीर है रहमान है दयालु है तो उसकी खबर किसी बा खबर इल्म वाले से पूछ देखो उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के विषय में किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उसका ज्ञान प्राप्त करो यानी गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट गीता ज्ञान भी इनकम्प्लीट और कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट क्योंकि कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह खुद कह रहा है कि तू उस पूर्ण परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उस वो अल्लाह कबीर है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परमेश्वर के विषय में परिचित नहीं है, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी नहीं जानता। दो ये बात सिद्ध होगी कि परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा है। इन दोनों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया कि पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर है और वो मनुष्य की तरह सह शरीर है और वही पूजा के योग्य है, उसका नाम कबीर है। अब आपको वेदों में दिखाते हैं पुण्यात्माओं, हम जो समाज हमारा विभाजित हुआ है ये परमात्मा के लिए हुआ है। जैसे पहले केवल हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में कुरीतियां आ जाने से उसमें फिर ईसा नाम, ईसाई ईसा मसीह नाम के एक महापुरुष आए, बाबा आदम आए, बाबा आदम के से आगे चलती चलती फिर ईसा मसीह जी आए। ईसा मसीह ने धार्मिकता के आधार पर कुछ समुदाय को सच्चा ज्ञान जैसा वो जानते थे वो ज्ञान दे करके अलग उनका नियम बनाए, तो वो अलग से समाज बना, पवित्र समाज बना, बुराइयों से दूर हुआ। ऐसे ही उसी धर्म ईसाई धर्म आगे चल के मुसलमान धर्म कैसे बना, हजरत मोहम्मद जी ने पवित्र आत्माएं तैयार की, उनकी बुराइयां छुटवाई, एक परमात्मा पर आधारित किए, तो वो ग्रुप बन गया, वो अलग से समाज बन गया। ऐसे ही फिर सिख समाज कैसे बना, गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले, उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया सत्यलोक में जाकर के, फिर बनारस में देखा कि वही परमात्मा बनारस में धानक रूप यानी कबीर रूप में, वहां जुलाहे के रूप में धानक रूप में काशी में विराजमान है। उसके बाद उस नानक साहब ने जो, क्योंकि गुरु नानक देव जी पहले पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे उसके, और सभी ये पूजाएं किया करते थे, गीता जी का पाठ करते थे, श्री कृष्ण राम कृष्ण का जाप जपते थे। जब उनको तत्व ज्ञान हुआ, परमात्मा का पता चला कि कौन है पूर्ण परमात्मा और किसकी पूजा करनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने एक अलग से एक पवित्र आत्माएं तैयार की जिनको सिख कहने लगे। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए भटक रहे हैं और हमें भगवान चाहिए। वो चाहे किसी भी समुदाय की पूजा से, यदि हमें मुसलमान धर्म की पूजा से परमात्मा मिले तो हम सारे उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने परमात्मा प्राप्त करनी है, करना है। और जैसे ये दास आपको बता रहा सब सदग्रंथों के आधार पे, अब हमने इस तत्व ज्ञान से हम स्वयं परिचित हो गए, सब सदग्रंथ हमारे सामने है जिनको हम सत्य मानते, तो उसको स्वीकार करके सभी पूरे विश्व ने, सब पूरे विश्व के मानव ने इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके अपना कल्याण करा लेना चाहिए। आज किसी का जन्म मुसलमान धर्म के अंदर है तो कल को वो हिंदू धर्म जन्म ले सकता है, क्योंकि हमारे संस्कार पहले के रले मिले हैं, ये बाद में विभाजित हुए हैं। और आज किसी का पवित्र हिंदू धर्म में जन्म है तो वो कल मुसलमान धर्म में भी जन्म ले सकता है, सिख धर्म में भी जन्म ले सकता है, ईसाई धर्म में भी जन्म ले सकता है। तो फिर हम उसको अच्छा मानेंगे, वही वही क्रियाएं करने लग जाएंगे। तो अब हमने नए सिरे से परमेश्वर की पहचान देखनी करनी है और उस सत्य भक्ति को स्वीकार करके अपना कल्याण कराना होगा, नहीं तो अन्यथा इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं है। अब पवित्र हिंदू धर्म में वेदों को एक श्रेष्ठ ज्ञान माना जाता, पवित्र चारों वेदों को। अब चारों वेदों के पढ़ने वाले ऋषि, महर्षि, मनुजी, वशिष्ठ जी और वर्तमान इसे क्या नाम कलयुग के महर्षि, ये दानंद आदि, ये सारे एक के बाद का ढिंढोरा पीटा करते हैं, परमात्मा निराकार है, भगवान निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है, और वेद बता वो साकार है, मनुष्य सदृश्य। आप देखिएगा यजुर्वेद, पहले ये दास आपको उन वेदों से निकाले हुए ये मंत्र अलग से निकाले हैं, इनको पढ़कर सुनाते हैं। देखो, वेदों में प्रमाण है कि परमेश्वर मानव सदृश साकार है, ये दास के द्वारा अनुवाद है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17, इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि मनुष्य जैसा है परमात्मा। अब इसको, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ इन कथित विद्वानों का ही सहारा लेना पड़ेगा, जैसे ऋषि दानंद जैसे का। अब स्वामी दानंद जी ने डेढ़ वेद का अनुवाद किया है, यजुर्वेद पूरा, ऋग्वेद के केवल प्रथम मंत्र का, वैसे एक से छह मंत्र भी, एक से छह मंडल का अनुवाद इसके इनके बारे में लिखा कि एक मंडल से छह मंडल तक इन्होंने अनुवाद किया, यानी आधा आधा यजुर्वेद यजुर्वेद पूरा। तो इन्होंने खुद प्रारंभ में ऋग्वेद के प्रारंभ में कहा कि जहां अग्नि शब्द हो वो उसका अर्थ परमेश्वर मानना चाहिए, अग्नि या अग्ने। ये देखो ऋग्वेद ये दोनों एक ही है वैसे तो, बड़े अमर छोटे में, लेकिन छोटा दिखाने में आसान है। मंडल प्रथम मंडल महर्षि दान सरस्वती द्वारा लिखा गया, यह है सार्वदेश प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, प्रथम मंडल हिंदी भाषा, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज। अब यहां से प्रारंभ होता है अथ ऋग्वेद भाषा भाष्य, प्रथम मंडल प्रथम सूक्त और प्रथम ही मंत्र में अग्नि शब्द से प्रारंभ है। इसको डिफाइन किया है स्वामी जी ने नीचे आकर के, यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने प्रमाण ये है कि ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम है, तथा यहां से पढ़े यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों करके सचिदानंद घन लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए, और इत्यादि सत्पथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का अर्थवाची है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म, अग्नि शब्द से ब्रह्म यानी आत्मा और परमात्मा दोनों ही। इस प्रमाण में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता, इस प्रकार प्रमाण से सत्याचरण के नियमों को जानते तथा उत्पालन करना ईसो व्रत है, व्रत कहता, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण के जानने वाले तथा प्रकाश सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। इसमें स्पष्ट किया है कि जहां यहां देखो ऋग्वेद मंडल नंबर एक सूक्त नंबर एक मंत्र नंबर एक ही चल रहा है, ये उसी में प्रमाण, इस प्रकार अग्नि शब्द से ईश्वर, यहां देखो इन्होंने स्पष्ट किया है कि जहां भी अग्नि शब्द हो उसका उसको परमेश्वर अर्थ करें। इन्होंने खुद भी इसी मंडल नंबर एक के सूक्त नंबर एक में स्वयं भी जहां अग्नि शब्द है परमेश्वर लिखा है, यहां देखना ये मंत्र नंबर दो में अग्नि माने वह परमेश्वर, और मंत्र नंबर तीन में अग्नि अग्नि ना अच्छी प्रकार ईश्वर की, तीन चार में अग्नि माने हे परमेश्वर, अब पांच में कवि कर्तु सर्वज्ञ कबीर नाम है वैसे ये परमात्मा कबीर, और छह में कि देखिएगा यहां छह में अग्नि माने परमेश्वर, यहां सात में अग्नि माने हे परमात्मा हे सबके उपासक करने उपासना करने योग्य परमेश्वर, और फिर नौ में आठ में शब्द अग्नि नहीं है, अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। यानी स्वामी दानंद जी कह रहे हैं कि अग्नि माने जहां शब्द, वैसे अग्नि माने सभी जानते आगे, लेकिन ये ऋषि लोग ही बताते हैं कि अग्नि माने परमेश्वर, और स्वयं भी अग्नि शब्द से इन्होंने कहा अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। इसी के आधार से एक आर्य समाजी विद्वान ने श्याम वेद का अनुवाद किया है, और उन्होंने इन्हीं की सलाह को मद्देनजर रखते हुए अग्नि शब्द का अर्थ परमेश्वर किया है। देखिएगा यजुर्वेद और श्यामवेद इकट्ठे जिल्द बांधा है, अब यहां हम श्यामवेद दिखाएंगे आपको, ये कौन है संपादक, प्रधान कार्यालय, दान संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा, वेद भिक्षु, सेवा आश्रम, मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना, और दान संस्थान नई दिल्ली, प्रकाशन प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली। इसमें आप देखिएगा ये साम वेद यहां से प्रारंभ होता है, ये देखो साम वेद भाषा वाचन, ये प्रथम अध्याय है, प्रथमो अध्याय, और प्रथम मंत्र में अग्ने माने हे परमेश्वर ईश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्ने अग्नि परमेश्वर, हे अग्ने ईश्वर, अग्ने ईश्वर, अग्ने माने परमेश्वर, इसी के दूसरे इसी पृष्ठ पे अग्ने माने ईश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्ने माने हे परमेश्वर, और भी बहुत ढेर सारे। अब प्रसंग आया यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखो ये सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक है, महर्षि दयानंद जी ने अपना अनुभव लिखा है, और वे कहते हैं वेदों का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। वेद ज्ञान के विरुद्ध अगर किसी भी व्यक्ति की टिप्पणी है, कोई विचार है, मैं नहीं मानूंगा, ऐसा वो कहते हैं। और स्वयं के उनके क्या विचार है, किसी ने उनसे पूछा कि परमात्मा साकार है वा निराकार, देखिएगा स्वामी जी का उत्तर अनुभव। अब इस स्वामी जी के इस पोज ने देख के आदमी स्वयं ते अट्रैक्ट हो जावे, इस जैसा तो महात्मा धरती पर पावे को नहीं। अरयू के था इसके बारे में इन्हीं का अनुभव बताएगा। ये देखो महर्षि दयानंद सरस्वती, ये सत्यार्थ प्रकाश है, यहां देखो अत सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण समविंत श्रीमत परमहंस वर्जाकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित, वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से लिखा ये स्वामी जी करें। ये कहां से छपा है, वैदिक यति मंडल दीना दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से, और ये प्रकाशक कौन है, मुद्रक कौन है, आर्य आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहना मार्ग रोहतक से छपा है। इसके सातवें समुल्लास में किसी ने पूछा कि परमात्मा साकार है वा निराकार, स्वामी जी कहते हैं निराकार। ये देखो ये सप्तम समुल्लास प्रश्न नंबर 156 पे प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है वा निराकार, स्वामी जी ने उत्तर दिया कि निराकार। और वैसे अपने ही थ्योरी का खंडन इन्होंने यहां कर दिया है कि सतुति से ईश्वर की प्रीति, गुणक्रम स्वभाव का सुधरना और प्रार्थना से निर्भाव अभिमानता, उत्साह और साय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह जी वाह, आप पे खंडन कर दिया है कि परमात्मा उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अब ये दास आपको बताएगा कि वेदों में क्या लिखा है। वेद कहते परमात्मा सह शरीर है और मनुष्य जैसा है। अब देखिएगा आपने ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17। इसमें शपथ लिखा है कि मनुष्यवत अग्ने, इसका संधि छेद यहां पढ़ो, मनुष्यवत अग्ने अंगीरस है, अंगीरसवत अंगीर है, यातिवत सदने पूर्वत सूचे अच्छे आया, यह वह दैव्यम जनम आसाद्य बहिर्षि यच यक्षी प्रियतम। अब स्वामी दयानंद जी ने यह अर्थ किया इसका। अब देखो ये मनुष्यवत, इन्होंने मनुष्यवत कहां लिख लिया, इन्होंने क्या क्या है, सूचे पवित्र अंगीर प्राण के समान धारण करने वाले। अब प्राण क्या होता है, जीव, अंगीर का अर्थ ये करते हैं प्राण के समान धारण करने वाले। अग्ने माने विद्याओं के सर्वत्र व्यापक अध्यक्ष कर दिया यहां पर, क्योंकि ये अपनी थ्योरी के ऊपर रखना चाहता है भगवान निराकार है। ये स्पष्ट कह रहा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा, मनुष्यवत स्पष्ट लिखा है, ये संधि छेद है, मनुष्यवत, ये मनुष्यवत है, मनुष्यवत आप इन्होंने ये अग्नि माने या परमेश्वर लिखना था आए है अध्यक्ष आप इन लिख दिया कि विद्याओं के सर्वत्र व्यापक विद्याओं से सर्वत्र व्यापक अध्यक्ष आप मनुष्यवत मनुष्यों के आने जाने समान आना जाना और ठोक दिया मनुष्यवत मनुष्यों के समान ये स्पष्ट है कि हे अग्नि मनुष्यवत अग्नि हे मनुष्य जैसे भगवान हे मनुष्य जैसे परमेश्वर कति स्पष्ट दूसरी बात तक कोई ना इसके अंदर मनुष्यवत के मनुष्य जैसे परमात्मा आप स शरीर हैं और जैसे आप पूर्ववत पहले आते रहे हो प्रथम सतयुग में त्रेता में द्वापर में कलयुग में अब भी आप उसी तरह आओ और हमें अपने तत्व ज्ञान से परिचित करा करके हमारा उद्धार करके अपने उस स्थान पर ले चलो जहां पर वह पुण्य आत्मा पहले वाली रहती है। और इन्होंने कीड़ंगा कर रखा देखो इसका अर्थ है मनुष्यवत मनुष्य के समान अग्नि माने परमेश्वर ये दास द्वारा किया गया इसका अनुवाद है। आप अंगीरसवत मनुष्य के समान शरीर धारण करके प्रत्येक युग में अपने सूचे पवित्र सदने माने घर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो। हे पूर्ववत पूर्ववत पहले की तरह यातीत मनुष्य के समान अर्थात जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्ध करता है वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो जैसे परमात्मा आए थे एक जुलाहे का काम करा करते एक जनसाधारण जैसी भूमिका किया करते वही वेद बता रहे हैं कि है परमात्मा जैसे अब वर्तमान में हम प्रार्थना करें परमात्मा आप सन 1398 में आए थे और आप एक साधारण सा काम करते थे हमें सदमार्ग भी बताते थे ये परमात्मा आप फिर पहले की तरह फिर आइए हमें भी परिपूर्ण कीजिए हम आपको अब आपके द्वारा बताए ज्ञान से हम अपना कल्याण करा सके। ये उसका अर्थ है देखो समान करते हो प्रियम हे प्यारे परमेश्वर हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए यानी अच्छी प्रकार आइए प्राप्त होइए तथा प्राप्त कीजिए अर्थात हमें शरण में लीजिए इस काल लोक से बाहर बहिर्सी बाहर सतलोक में जन्म अपने जन को जन्म को यानी अपने उपासक को अर्थात अपने भक्त को देव स्वरूप अच्छी आत्माओं में सथाई रूप से प्रतिष्ठित कीजिए यानी जहां अच्छी आत्मा रहती है पुण्य आत्मा सतलोक में जो रहती है वहां हमें ले चलियो। अब इन्होंने क्या डंगा कर रखा है देखो ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 ये महर्षि दानंद का स्वयं अनुवादित है प्रथम मंडल और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 ये देखिएगा सूक्त नंबर 31 और मंत्र 17 में स्वामी जी लिखे मनुष्यवत ये मनुष्यवत अग्ने अंगीर संगीरो इन लिखा है सूचे पवित्र अंगीरा प्राण के समान धारण करने वाले अग्ने विद्याओं के सर्वत्र व्यापक सभा अध्यक्ष आप या सीधा भगवान लिख देना चाहिए था हे परमात्मा हे परमेश्वर आप मनुष्यवत मनुष्यों के आने जाने के समान वाह के होया इसमें वाह सीधा अक्षर सीधा सरलार्थ होता है इसमें वाह शब्द से कोई तात्पर्य नहीं रहता वाह जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं वाह जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले हैं जैसे सबको समान करने हारे विद्वानों के अति चतुर जन्म मनुष्यों को अच्छे प्रकार प्राप्त हो जिए उस मनुष्य को विद्या और धर्म और प्रत्येक प्राप्त कीजिए उत्तम मोक्ष के साधन में स्थित और वहां उसको प्रतिष्ठित कीजिए। अब देखो अंगीरसवत का क्या अर्थ है शरीर व्यापत प्राण वायु सदृश राज्य क्रम व्यापत पुरुष के तुल ये अंगीरस माने पुरुष के तुल यानी मनुष्य जैसे शरीर युक्त परमात्मा है ये यहां सीधा लिखा है कि मनुष्यवत मनुष्यवत मनुष्यों के समान मनुष्यवत मनुष्यों के समान अब परमात्मा संस्कृत से स्पष्ट करती है देखिए मनुष्यवत अग्ने हे परमात्मा जैसे मनुष्य जैसे भगवान तेरा गजब हो। अरे देखो इसी, अब आपको यजुर्वेद दिखाते हैं। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दान सरस्वती कृत, इसमें अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में ये देखिएगा, ये यजुर्वेद भाषा भाष्य चतुर्थ चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ, ये पंचमो अध्याय। यहां देखो अथ पंचमो अध्याय, इसमें प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी, दो बार स्पष्ट किया है, अग्ने माने हे परमेश्वर, तनु माने शरीर, रसी माने। अब देखो इन्होंने अनुवाद क्या किया स्वामी जी ने, हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि अग्ने बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के तनु शरीर के समान है, बता इसका कोई सेंस बने है, पढ़ने में शर्मा दर्द हो जा, या सीधा लिखना चाहिए था अग्नि तनु रसी, जहां 100 जगह लिख रखा है इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे भगवान, हे भगवान तुम आप स शरीर हो और उस परमात्मा का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट तीन परमात्माओं की व्याख्या दी है, वो पूर्ण परमात्मा के विषय में ये जानकारी वेद बता रहे हैं। कबीर परमेश्वर स्वयं कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। अब देखो एक और दिखाऊं करिश्मा इस महर्षि दानंद का, हाय हाय, प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में यही शब्द लिखा है कि अग्ने तनुरसी, ये देखो ये यजुर्वेद भाषा भाषा प्रथम अध्याय का मंत्र नंबर 15 ये यहां पर है, ये 15 इसमें शपथ का अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम। अब ये अग्ने अग्ने तनुरसी परमात्मा ए परमेश्वर आप सह शरीर हैं, इसका अब इसमें 6 जो है ना 11 शब्दों का अर्थ ही नहीं किया कि कहीं उन्हें सोचा कौन पढ़ देगा इसे इतने बड़े हैं और इसमें अर्थ छोड़ दिए। और क्या लिखा इसका अनुवाद क्या क्या है, सब मनुष्यों के सहित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए देखो बड़े बड़े पत्थर हैं और काष्ट के काट के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए इस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के लिए के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान व विविध भागों के प्रति प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। आप बताओ पुण्यात्माओं ये कोई अनुवाद है इस महापुरुष का, है तेरा गजब भैयो, ने कहा बड़े बड़े मूसल काट के पत्थर में ग्रहण करता हूं, इन काट के मूसला नर्क बड़े बड़े पत्थरान भगवान शर्मा मारेगा, इसका अर्थ ही बहुत ही अच्छा बनता है, इसने कुछ ज्ञान नहीं था, बकवाद गिट गया सारी। और जहां अग्नि माने परमेश्वर लिखना था वो छोड़ दे दिए छे, और देखो इसी में कितना कमाल कर रखा है इसने, ये 15वां आपने देखा, अब देखो इसके ऊपर यहां अग्नि अग्नि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, ये देखो फिर 17 में, ये 15वां था इसका 7वां अग्ने माने परमेश्वर, यहां अग्ने माने परमेश्वर लिखना तो दूर रहा, सब को छोड़ दिया, अक्षर नहीं लिखे, और ये 150 वर्ष से ये छपता रहा न्यू का न्यू, जिसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सके, ये आर्य समाज के विद्वान इनको ज्ञान नहीं था, इसने वैसे बेच बेच कर रोटी खाते रहे ये महर ये आचार्य पाचार्य। देखो फिर 18 में अग्ने माने हे परमेश्वर, जहां भी अग्नि शब्द है वहीं पर परमेश्वर शब्द की अर्थ किया इसने, अग्नि माने जगदीश्वर। अब देखिएगा इसका प्रथम अध्याय के 15वें का क्या अर्थ बनता है, ये देखो इस दास ने किया इसका अर्थ, यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 15 अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जन, इसका अर्थ संधि छेद अग्नि तनुरसी वाचय विसर्जन देव वित्ते त्वा ग्रहणिम ग्रहणामी व्रत ग्रावा असी वनस्पत्य इदम, इसका अर्थ अग्नि परमेश्वर तनु माने, परमेश्वर का तनु माने शरीर है, अर्थात परमेश्वर सह शरीर है। वाचा विसर्जने तत्व ज्ञान के मार्ग के वचनों को विसर्जन यानी त्याग देने से देव परमेश्वर द्वारा मिलने वाले वित्तीय माने लाभ के स्थान पर दुष्कर्मों का ग्रावा माने बादल रूपी आवरण छाया हुआ है, उस सत भक्ति को फिर गृहनामी माने ग्रहण करो, अर्थात शुभ व सत शुभ व भक्ति कर्म उसी परमेश्वर के बताए मार्ग अनुसार करो। परमेश्वर के निमित्त शांति के लिए यज्ञ करने योग्य पदार्थ अर्थात धार्मिक कार्य को उस परमेश्वर की भक्ति वनस्पत्य जैसे बीज वृक्ष से बीज बनता ऐसे सत नाम रूपी सत भक्ति बीज से इस प्रकार अच्छी तरह शांति के साथ करना चाहिए। इसलिए जो यज्ञ करने योग्य द्रव्य अर्थात शुभ धार्मिक करने योग्य कार्य करो जिससे शांति प्राप्त हो सके, इसलिए यज्ञ करने के योग्य पदार्थ तथा शुभ कर्म करो। तो ये अर्थ बनाए जैसे हवन करने से घी मुख्य द्रव है और यदि घी की जगह मिट्टी का तेल डालें या डीजल डालें तो हवन नहीं होता, ज्यादा हानिकारक होता। इसलिए कहा है परमात्मा आकार में है, उसने अपना संविधान वेद तथा सत शास्त्र शब्दावली कबीर साहिब के माध्यम से भक्ति मार्ग बताया हुआ है। अपने बताए हुए उनके बताए हुए कार्य न करने से परमेश्वर का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, आत्मा तथा परमात्मा के मध्य दुष्कर्मों के बादल छाए हैं, उनको हटाने के लिए प्रेम पूर्वक शास्त्र अनुकूल भक्ति करो। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चित मंजन जल के तेज नयारे। अब हम 5 मिनट का सत्संग वही करते हैं जहां से प्रारंभ किया था। मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम। श्वेत छतर सिर मुकट बिराज, देखत ना उस चेहरे नु। परमात्मा सह शरीर है और कहा कि सतलोक के अंदर परमात्मा विराजमान है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज है, उस परमात्मा के सिर के ऊपर श्वेत छत्र है और श्री उसके सिर के ऊपर मालिक के श्वेत ही एक मुकुट है, यानी बहुत सुंदर शरीर है परमात्मा का। उस चेहरे ने उस परमेश्वर साकार भगवान को नहीं देखते क्योंकि तुम्हारी साधना शास्त्र विरुद्ध है, तुम्हारा ज्ञान भी शास्त्र विरुद्ध है। श्वेत छतर सिर मुकट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थलियां खेती बो है ये भूल गए निज डेरे नु। ये संसार समझदा नाही, कंदा श्याम दोपहरे नु, ये संसार समझदा नाही, कंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। क्या बता रहे हैं परमात्मा, परमात्मा की प्यारी आत्मा परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान को कैसे समझा रहे हैं कि ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दो पैरे नू। इस काल भगवान ने कहा यू भगवान है जो सबको मार रहा है, गधे बना रहा है, किसा बेटा मारा, किसी की बेटी मारी, का कुंबे के कुंबे समाप्त कर दिया, क्षेत्र के क्षेत्र नष्ट कर देता है और कितना कष्ट आप भोग रहे हो और फिर भी कहते हो आनंद ही आनंद है। इस काल के लोक में कहीं सुख नाम की चीज नहीं है। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, जैसे शराब पी के कोई पड़ा हो दोपहरी में जून के महीने में की तो, और उन्हें कोई कह रहा उठ ले भाई इतनी गर्मी में तू यहां क्यों पड़ा है, वो शराबी कहता चेड़ा में मौजूरी है, तो वो दो पैर में पड़ा पसीना पसीना हो रहा, उसने होश ही नहीं है। तो हमने इस माया की काल की माया का नशा हो गया और हम इतने आपत्तियों से घिरे हुए हैं फिर भी कहते हैं क्या हाल है, मित्र मित्र से मिलता है कहां हॉस्पिटल में, और क्या हाल है कि बस ठाठ है मौज हो रही है, हॉस्पिटल में मौज का के मेल कभी दुखी आत्मा जाया करे, दोनों दुखी वहां पर, और फिर भी नौके क्या हाल है, ठीक ठाक मौज है। अरे मौज का के मेल, यहां नाम नाम कहने सुख है, मौज है, लेकिन सुख किसी को नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं गरीब दास ये वक्त जाता है रोग इस पैरे नू, ये मनुष्य शरीर हाथ से छूट जाएगा, ये गलत साधना करके आपका मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा, फिर रोया करोगे कुत्ते की तरह ऊपर न मुंह करके, या के बड़ी मरी गेला। कहते समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं रहे सादाओ, बोलो सतगुरुदेव।